श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वलो सर्वो प्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मीति ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेदचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः आदगुरये नमः जुगादगुरये नमः सद्गुरये नमः श्रीगुरुदेवाय नमः ॐ शान्तिः 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 बोलो सच्चिदानन्द भगवान् की जय श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय कण कण में व्याप्त सर्वत्र जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए सर्वकाल वंदे ब्रह्मलीन वेदांत के श्री श्री स्वामी निर्मल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन परम श्रद्धेय स्वामी निर्मल चेतन जी महाराज तथा उपस्थित संतवृंद भक्तवृंद सबका अभिनंदन करते हैं। महापुरुषों की कृपा हो रही है, उन्हीं की पावन तपस्थली पर बैठ करके उन्हीं के आशीर्वाद से हम आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, ज्ञान चर्चा श्रवण करते हैं। किस प्रकार इस भवसागर से बंधन से छुटकारा हो सकता है, क्योंकि हरेक प्राणी सुख चाहता है और सुख के लिए ही प्रयत्न करता है। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, और सुख भी ऐसा चाहते हैं कि जिसकी कभी निवृत्ति ना हो, ऐसा अविनाशी सुख चाहते हैं। वो जो अविनाशी सुख है वह स्वरूप का सुख है, आत्मा का सुख है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना ही अविनाशी सुख आपन आसन। अविनाशी सुख है अपने आत्मा में स्थित होना। तो उस सुख की इच्छा से ही हम सत्संग में आते हैं, संतों के पास आते हैं, ज्ञान चर्चा श्रवण करते हैं। किसी न किसी माध्यम से हम उस सुख के अभिलाषी हैं। तो जैसे हम हर रोज़ भक्त कबीर जी महाराज जी की पावन वाणी के माध्यम से चिंतन कर रहे थे, आज और कृपा है सतगुरु की कि आज संक्रांति का पर्व है। 12 महीने के अंदर जब भी संक्रांति होती है या कोई पर्व होता है तो हम महापुरुषों के चरणों में आकर के तो उनसे श्रवण करते हैं। तो 12 महीने के अंदर किस महीने में किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जैसे काल की गणना है 12 महीने, 6 ऋतु हैं, पक्ष है, इसके अंतर्गत इसी प्रकार जो जिज्ञासु है उसकी अवस्था के पड़ाव हैं अलग अलग। जिज्ञासु चिंतन करता है तो किस पड़ाव से उसको कैसी अवस्था प्राप्त होती है, कैसे कैसे उसकी उन्नति होती है, इसी को लेकर के ही शास्त्र का उपदेश है जिज्ञासु के लिए। शास्त्र जो अभिलाषा करता है, मुक्त होने की इच्छा करता, उसी के लिए है। तो पावन वाणी में गुरु महाराज जी ने 12 महीने का उपदेश दिया है। उसके अंतर्गत आज आषाढ़ का महीना है, ज्येष्ठ अभी पूर्ण हुआ, आषाढ़ आरंभ हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु का दूसरा महीना है आषाढ़, इसके बाद वर्षा ऋतु आरंभ होती है। तो इस महीने में पावन जो उपदेश है गुरु महाराज जी देते हैं 12 माह के अंदर, आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाह न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस, द्वय भाए विगुचिय गल पई सो जम की फास, जेहा बीजै सो लुणै मथै जो लिख्यास, रैण विहाणी पछताणी पठ चली गई निरास, जिनका साधु भेटिय सो दरगाह होए खलास, कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास, प्रभ तोध बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास, आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास। इस प्रकार का पावन पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं आषाढ़ के महीने में। ये जो आषाढ़ का महीना है इसमें भयंकर गर्मी पड़ती है, सूरज की जो किरणें हैं अत्यंत तप्त देती है, जो तालाब हैं, नदियां हैं, टोभे हैं, उसमें से जल भी सूख जाता है, भयंकर गर्मी होती है। जो जीव जंतु हैं, मृग आदि हैं, वो प्यास से व्याकुल होते हैं, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। तो इसमें सभी प्राणी गर्मी से दुखी होते हैं, अनेक प्रकार की ठंडी का यत्न करते हैं, हम लोग एसी लगाते हैं या फिर ठंडे इलाके में चले जाते हैं, बर्फानी इलाके में चले जाते हैं, कश्मीर की तरफ चले जाते हैं कि ये जो गर्मी है इससे शांति मिले। तो जो बाहर की ठंड है, जो शीतलता है बाहर की, उससे क्या होता है,
आज 12 महीने का जो है वो चल रहा है, उनको कहने संक्रांति की कथा कर रहे हैं, ठीक।
तो इससे क्या होता है, बाहर की जो शीतलता है ना वो शरीर को ठंडा करती है, शरीर तपस से जब तप जाता है तो शरीर की शांति चाहते हैं बाहर की, चाहते तो अंदर है शांति। तपस किसको होती है? शरीर को, लेकिन उसका अनुभव कहाँ होता है? अंदर। क्यों ऐसा होता है? जब बाहर से गर्मी, जो सूर्य की किरणें पड़ती है, गर्मी है, वो किसको? शरीर के ऊपर पड़ती है तो शरीर गर्म होता है, लेकिन उस गर्मी का दुख कहाँ अनुभव होता है? मन में। तो कारण क्या हुआ? गर्मी किसी को लगती है, अनुभव कोई करता है, तो कारण इसका क्या? हमारे को कष्ट किस बात का? हम दुखी हो रहे हैं, हमारे को तो गर्मी लग नहीं रही। गर्मी तो शरीर को लग रही है, लेकिन दुखी हम हो रहे हैं। हम कहते हैं कि ठंडे इलाके में चलते हैं, कोई शीतलता का प्रबंध करते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हम दुख किसका है और अपने ऊपर ले रहे हैं। हमारा नहीं है दुख, जो दुख धर्म है वो हमारा नहीं है, वो है मन का। दुख अथवा सुख का जो साक्षात्कार है उसको भोग कहते हैं। तो सुख का अथवा दुख का भोग कौन करता है? मन। लेकिन मन का धर्म अपने हमने अपने ऊपर थोप लिया है कि हम दुखी हैं किससे? गर्मी से। गर्मी मन को भी नहीं लग रही, गर्मी तो स्थूल शरीर को लग रही है, लेकिन अध्यास है ना हमारा, भ्रांति से हम स्थूल शरीर के साथ भी जुड़े हुए हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ भी जुड़े हुए हैं। जो स्थूल शरीर का धर्म है गर्म होना, ठंडा होना, ये इसका धर्म है, लेकिन इसको हम मानते हैं। सिर हमारा, जो सिर है, जब गर्म होता है तो सिर गर्म होता है ना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उससे भी हम दुखी होते हैं। जो सिर का गर्म का दुख है वो हमारे को मन में आता है, मन का फिर हमारे को, मन के साथ हमारी आसक्ति है, तो हम कहते हैं मैं सिर पीड़ से दुखी हूँ, सिर की पीड़ा से मैं दुखी हूँ। तो कहाँ सिर की पीड़ा, कहाँ मन, फिर कहाँ हमारा दुखी होना? इससे चिंतन हमारा जो हम करते हैं ना, वो गहरा नहीं जा पा रहा, केवल बाहर बाहर रहता है, अंदर नहीं रहता। गर्मी सर्दी जो भी होती है वो स्थूल शरीर को होती है, हाँ अंदर भी होती है गर्मी, लेकिन यह वाली जो बाहर वाली है ये नहीं होती। अंतःकरण में भी गर्मी होती है, किसकी? क्रोध की अग्नि जब बलती है ना अंदर, तृष्णा की अग्नि, उससे अंदर भी जलन होती है। तो इसलिए वो भी कहाँ होती है जलन? आशा तृष्णा राग द्वेष क्रोध काम, विकारों की जो गर्मी है, विकारों का जो कष्ट है वो किसमें है? विकारों का चिंतन करना अंतःकरण में है, इंद्रियों का धर्म है, विषयों का दर्शन करती हैं इंद्रियां और उसका अनुभव करता है मन। लेकिन फिर भी जब क्रोध आता है तो अंदर से हम कहते हैं कि मैं जल रहा हूँ, मेरा दिल जो है सड़ रहा है, मेरा हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, फिर भी हम दुखी हैं, हृदय की जलन से भी दुखी हैं और बाहर की गर्मी से भी दुखी हैं। अपने को अलग बोलते भी हैं कि मेरा हृदय जल रहा है, मेरा शरीर गर्म है, मेरा और मैं दोनों अलग अलग हैं, तब भी फिर अपनी आसक्ति सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में है। इसलिए हम इनके धर्मों को अपने में आरोप करके दुखी होते हैं, आत्मा के ये धर्म नहीं है, लेकिन आत्मा के धर्म शरीर में दिखाई पड़ते हैं, अस्थि भांति और प्रिय, ये आत्मा के धर्म हैं, ये शरीर में पड़ते हैं, इसलिए शरीर जो है हमारे को चेतन दिखाई पड़ता है, कुछ भी काम शरीर नहीं कर पाता, जड़ है, लेकिन आत्मा का जो सत्य है वो शरीर में दिखाई पड़ता है। चेतन नहीं है शरीर, प्रकाश नहीं है इसमें, ये ना अपने आप को जानता है ना दूसरे को जानता है। लेकिन जो सत्य के बाद चेतनता है वह किसकी? आत्मा की। लेकिन वो शरीर का तो आत्मा का विभेद नहीं हम कर पाते, विभाग नहीं कर पाते, विवेक नहीं है। इसलिए जो शरीर के धर्म है वो आत्मा में और आत्मा के धर्म शरीर में, हमारे को पता नहीं चलता कि कौन किसका धर्म है। तो हम शरीर को आत्मा मानते हैं, आत्मा को शरीर मानते हैं, इसी कारण हम दुखी हैं। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो न जिन्ना पास। तो कहते हैं कि आषाढ़ का महीना जैसे बाहर से दुखी करता है, किनको दुखी करता है? जो विवेचन नहीं कर पाते, जो इस शरीर के भेद को नहीं जानते कि इस शरीर का अधिष्ठान कौन है, आश्रय कौन है, जो उसको नहीं जानते उनको दुखी करता है। हर ना हो न जिन्ना पास, हरि रूप पति नहीं है जिनके पास। ऐसी जो जिज्ञासु रूप स्त्री है ना, कहते आषाढ़ का महीना उसको दुखी करता है, तपश होती है उसके हृदय में, जलन होती है, काम क्रोध आदि विकारों की, आशा तृष्णा की जलन होती है उसके अंदर। किसके? हर ना हो न जिन्ना पास। नाव कहते हैं पति, हरि रूप पति जिनके हृदय में नहीं है, हरि रूप पति का निवास नहीं है जिनके पास, यानी अपने आश्रय को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, उनको आषाढ़ का महीना दुखी करता है। तो फिर क्या करते हैं जिनको पति भूल गया, हरि रूप पति जिनके हृदय में है तो सही, ऐसी बात तो नहीं है कि हरि कहीं ना हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि वो दुखी है जिनके हरि पास में नहीं है। तो हरि तो पास में है लेकिन जिनको दिखता नहीं है, जिनको अनुभव नहीं होता, हरि के बिना कोई जगह नहीं है, लेकिन जिनको उनका अनुभव नहीं हो रहा वो दुखी हैं आषाढ़ के महीने में। जैसे बाहर के जो जीव जंतु हैं बाहर की गर्मी से दुखी हैं, बाहर के शरीर की जो जलन है उससे दुखी हैं, तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं, किसी ठंडी ठंडी का आसरा लेते हैं, तो वहाँ जाने से बाहर का जो शरीर है ना उसमें शांति होती है, लेकिन जो अंदर की जलन है वो बाहर की शीतलता से नहीं कभी भी हट सकती, क्योंकि अंदर हरि रूप जो पति है आसरा है। जैसे बाहर का आसरा है ना ठंडी, उसी प्रकार अंदर शीतलता या हरि जा हरि का नाम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम, हरि का नाम जो जपते हैं ना उनका अंदर शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जो जिनको भूल गया है, हरि रूप पति के दर्शन नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं आषाढ़ के महीने में आशा तृष्णा राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या काम क्रोध शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो विकार हैं दोष हैं उनके कारण दुखी हैं, जलते हैं, तपश है उनके अंदर। यदि उनको हरि परमात्मा की याद रहे, स्मरण रहे, तो सबसे शीतल कौन है? सबसे शीतल है हरि का नाम। सूर्य है, सूरज की बात छोड़ो, चंद्रमा है, चंदन है, ये भी ठंडे हैं, लेकिन अति शीतल है प्रभु का नाम, अति शीतल। इनसे भी ठंड होती है बाहर, चंदन लगाने से मत्था ठंडा होता है, चंद्रमा उदय होते हैं तो दिन की जो तपश है उसको दूर करते हैं, लेकिन करते बाहर के शरीर की हैं, अंदर नहीं करते। तो कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको आषाढ़ का महीना, इस महीने में यानी ये जो मनुष्य रूप रूपी आषाढ़ का महीना है, ये भी एक अवधि की बात करते हैं। ये जो मनुष्य शरीर रूपी जो आषाढ़ है, उसमें दुखी कौन होते हैं? हर ना हो न जिन्ना पास, जिनके पास में हरि रूप जो पति है वह नहीं है। उनकी हालत कैसी है? जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। क्यों दुखी है? यो उस जलन की शांति तो चाहते हैं, आशा रूपी जलन है उनके अंदर, तृष्णा रूपी आग भड़क रही है उनके अंदर, तो उस तृष्णा की अग्नि को कैसे शांत करना चाहते हैं? कोई अग्नि को शांत करना चाहे तो क्या करे? लकड़ी डालता जाए उसमें, कभी शांत हो जाएगी अग्नि और भड़केगी। तो कहते हैं कि जिनको हरि का विस्मरण हो जाता है, उनके अंदर आशा तृष्णा की अग्नि भड़कती है, लेकिन उस आशा तृष्णा की अग्नि को शांत करने के लिए क्या करते हैं? पदार्थ इकट्ठे करके ना, पदार्थ संसार के पदार्थों को इकट्ठा करके क्या करते हैं? जैसे अग्नि में जब भी डालते जाएंगे लकड़ी तो बढ़ती जाती है, तो तृष्णा रूपी अग्नि को शांत करने के लिए क्या है? संसार के पदार्थ रूपी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं लोग, कि हमारी जो तृष्णा है यानी पूर्ण हो जाए, पूर्ण मतलब शांत हो जाए, तो शांत करने के लिए उल्टा उसमें लकड़ी डालते हैं। तृष्णा पदार्थों की है, संसार के वैभव की तृष्णा रूपी अग्नि है अंदर, तो उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं? संसार की पदार्थ रूपी लकड़ियां डालते जाते हैं और बढ़ती जाती है। जहाँ से शीतल होनी है वो तो जल से ही शांत होती है अग्नि, जब भी होती है। तो जहाँ कौन सा जल है जो अंदर की अग्नि को शांत करे, तृष्णा रूपी अग्नि को शांत करने के लिए कौन सा जल है? तृष्णा बुझे हर कै नाम। तृष्णा रूपी अग्नि बुझती कब है? हरि के नाम से, वैसे नहीं बुझती। तप्त कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो। जो अंदर हमारे तपस का कड़ाहा जल रहा है ना, कौन सी तपस है? तृष्णा की। वो तपस बुझती तब है गुरु का जो शीतल नाम है, जब वो हमारे अंदर आता है। प्रत्यक्ष अग्नि साड़ती है लोगों को तो जल से शांत करनी पड़ती है, लेकिन प्रत्यक्ष अग्नि भी नहीं साड़ सकती जिसके हृदय में हरि है। ये आपने अनेक प्रमाण देखे हैं। प्रहलाद को क्या हुआ? साड़ने का यत्न किया कि नहीं किया? बाहर वाली अग्नि में प्रहलाद को हिरण्याक्ष ने कोशिश किया कि बाहर वाली अग्नि में जला दिया जाए। अंदर वाली तो शांत होती है हरि ना हरि के द्वारा, लेकिन बाहर वाली भी हो जाती है। तो जब प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई अग्नि में और पूरी अग्नि भड़क रही है, तो प्रहलाद क्यों नहीं जले? जल जाना चाहिए ना, हम लोग अग्नि में उंगली भी नहीं डाल सकते, लेकिन जिसके हृदय में हरि है, हरि का नाम है, जिसके हृदय में राम है, उसको बाहर की अग्नि भी नहीं जलाती। होलका जल के भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद तो अंदर ही नाच रहा है। तो इसलिए कहते हैं भाई जी, महापुरुषों ने एक बात लिखी है कि जल अग्नि में घटिया जले न डूबे गुरप्रसाद। जल में समुद्र में फेंक दिया था प्रहलाद को, तब भी कुछ नहीं हुआ, समुद्र ने ऊपर उठा लिया। तो अग्नि में बैठा दिया तो तब भी नहीं हुआ, इसमें क्या है? कहते हैं गुरप्रसाद, गुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से। क्योंकि सतगुरु ने क्या किया उसको? नारद जी महाराज ने उसको जब गर्भ में था वहीं उपदेश दे दिया, यानी गुरु मिल गए उसको, तो हरि का नाम उसके अंदर है, नाम का स्मरण किया तो हरि उनके अंदर है। तो जिनके हृदय में हरी है, उनको अंदर की अग्नि तो कभी उनको कुछ कर ही नहीं सकती, बाहर की भी नहीं करती। सीता जी को जब राम जी लाए हैं तो अग्नि के अंदर से निकाला था कि नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। जब जाना था, हरण हुआ था, उससे पहले भी निकाला था, जब वहाँ से आए थे तब भी अग्नि से निकाला था, दो बार अग्नि परीक्षा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हरि रूपी पति अंदर बैठा है, तो उनको बाहर की अग्नि ने कुछ भी नहीं किया। कहते हैं बाहर की अग्नि तप्त किनको करती है, आषाढ़ का महीना किनको दुखी करता है, हर ना होना जिन्ना पास, जिनके हृदय में हरि रूप पति विस्मरण हो गया। तो सीता जी के हृदय में हरि रूपी पति थे, तो अग्नि ने कुछ भी नहीं किया, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि जिनके हृदय में हरि रूपी पति होता है, हरि का नाम होता है, उनको ना बाहर की अग्नि जलाती है, ना कृष्णा रूपी अग्नि जलाती है, उसके बिना कभी भी शांत नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। कृष्णा रूपी अग्नि की शांति के लिए जब बाहर के पदार्थ रूपी लकड़ी डालते जाएंगे तो भड़कती जाएगी, शांत नहीं होती। तो वो लोग जग जीवन पुरख त्याग कह, जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनके अंदर तृष्णा की अग्नि तप्स होती है, वो फिर उसको शांत करने के लिए मानस संधि आस, बाहर के जो आश्रय हैं ना, बाहर के जो पदार्थ हैं या बाहर के कुटुंब हैं, जो संबंधी हैं, उनकी आशा करते हैं कि वो हमारे पास रहें, वो हमारे बने रहें, पदार्थ हमारे पास आ जाएं, तो हमारी अग्नि शांत हो जाए। लेकिन नहीं होती। तो हुआ क्या, जग जीवन पुरख त्याग के, जो जीवन देने वाला था ना, जगत को जीवन देने वाला, संसार को प्रकाशित करने वाला, जगत का जीवन है, ऐसा जो पुरुष है वो हरि रूप पुरुष है। पुरिषु श्येते ति पुरुषः, पुरिषैनाति ति पुरुषः, जो हरेक के हृदय में शयन कर रहा है, यानी अंदर रह करके प्रेर है, प्रेरक है, अंतर्यामी है, ऐसा जो पुरुष है उसका त्याग किया, यानी उसका विस्मरण किया, और उसको विस्मरण करके जिसने ये संसार रूपी कायनात को प्रकाशित करना है उसको छोड़ करके, तो संसार को आश्रय बनाया, तो अग्नि और बढ़ गई, तो फिर क्या होता है, द्वय भाय विगुचिय, उन लोगों को अंत तक फिर भटकना ही पड़ता है। इसमें मेन कारण क्या है, तो द्वय भाय, उनके अंदर द्वैत भाज यानी प्रकाश है, द्वैत का प्रकाश है, अज्ञान है अंदर, द्वय भाय विकुचिय, द्वैत के अंदर, द्वैत के द्वारा, द्वैत के पर्दे में जब रहते हैं तो विकुचिय यानी खराब होते, दुखी होते, द्वय भाय विकुचिय, द्वैत के कारण इस संसार की अशक्ति, कृष्णा रूपी अशक्ति बढ़ती जाती है, अग्नि शांत नहीं होती। तो क्या होता है, गाल पई सो जम की फांस, यानी जन्म मरण की फांसी नहीं टूटती, क्योंकि द्वैत के कारण, द्वैत के साथ अशक्ति है। द्वैत क्या है, अपने से अलग जो है सब द्वैत है, एक से अलग जो ही है द्वैत है। तो अपने से अलग क्या है, स्व से अलग, अपने से अलग क्या है, शरीर है, इंद्रिय है, शरीर के संबंध रखने वाले पदार्थ हैं, सभी अपने से अलग हैं कि नहीं। मेरा, जिसके ऊपर मेरा की स्टंप लगी है ना, मेरा मोहर छाप लगाई है मेरा, वो सब द्वैत है, अपने से अलग है। तो जब तक मेरा वाली मोहर छाप जिस पे है वो कभी भी सुख नहीं दे सकता, उसके कारण भटकना ही पड़ेगा। जिस जिसके ऊपर आप मोहर लगाएंगे ना कि मेरा है, वही दुख का कारण, वही दुख है, दुख का कारण क्या, दुख ही है। जब आप मेरा जिसको बोल देंगे वो कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। तो इसलिए कहते हैं द्वै भाए विगुचिय, ऐसे जो होते हैं ना व्यक्ति, वो द्वैत के पदार्थों में, द्वैत के चिंतन में दुखी होते हैं। तो फिर इसका क्या रिजल्ट होता है, जो द्वैत में रहते हैं, जिनको एकत्व दर्शन नहीं होता, सर्वत्र प्रभु का दर्शन नहीं करते, हरि का दर्शन जब होगा तो केवल अंदर नहीं होता, जिसके अंदर हरि का दर्शन हो जाता है उसको सब जगह हरि ही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं गाल पई सो जम की फास, उनके गले में जमों की फाही पड़ती है, यानी उनको फिर धर्मराज के दूत जो है उनका दर्शन करना पड़ता है, यानी धर्मराज के पास जाना पड़ता है। धर्मराज के पास कौन जाएगा, जिसने हरि को साक्षात्कार नहीं किया, क्योंकि विरोध है ना दोनों का, जो हरि का सेवक है, जो हरि के भजन करने वाले हैं, उनके पास कभी भी नहीं आते, क्योंकि जह साधु गोभेद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुट है निकट न जाइए हो दूत, कहते हैं कि वहाँ पर नहीं आ सकते। तो जम की जो फाही है, जम यानी आता है ना लेने, किसको, जिसके अंदर द्वैत है, यानी जिसकी आसक्ति, जिसका देह अध्यास अभी नहीं टूटा, उसको लेने आता है जम। कब आता है, जब जे शरीर छूटता है बाहर वाला, तो इसका मतलब बाहर वाला शरीर छूटने के बाद भी जम किसको लेके जाएगा। यदि जम का वर्णन है कि जम के दूत आते हैं, तो यानी आते हैं तो किसी को लेके जाते होंगे, तो लेके किसको जाएंगे, ये वाला तो हम अपने हाथों से जलाते हैं, तो लेके किसको जाते हैं। आत्मा का तो जम के साथ कोई मतलब नहीं है, आत्मा तो ना जायते मृियते वा कदाचन नयम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतो प्राणोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न आता है, न जाता है, न मरता है, शरीर के मरने पर भी नहीं मरता। तो जब जम की बात करते हैं तो जम किसको लेके जाता है, जीवात्मा, जीव आत्मा, आत्मा का नाम जीव है, कब, जब उसकी उपाधि के साथ एकता रहती है। तो यानी सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो प्राणों के सहित जब आत्मा की शक्ति रहती ना, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, उसको लेने आता है, यानी जन्म मरण का चक्कर पड़ता है। तो देह अध्यास जब तक नहीं टूटा तब तक ऐसा होता है। तो फिर जब यहाँ से जाते हैं ना मर के, ये शरीर जहाँ छूटा, जब सूक्ष्म शरीर लेकर के जाते हैं, तो फिर वहाँ जाकर के क्या होता है, जैसा जेहा बीजय सो लुणे, ये तो हम जानते ही हैं कि जिस प्रकार का भी बीज होता है वृक्ष, वैसा ही पैदा होता है। यदि किसी ने कांटे वाला बीज बोया है तो कांटे वाला ही वृक्ष होगा, उसको दाख नहीं मिल सकती। फरीदा लोड़े दाख बिजौरियाँ किक्कर बीजे जट, फरीद महाराज जी कहते हैं कि किक्कर का बीज बीजा हुआ है जाट में, और उसके आशा किसकी करता है कि मेरे को बिजौर की दाखें मिल जाए, तो नहीं मिल सकती। हंडे उन कतायदा पैदा लोड़े पट, रेशम का कपड़ा कभी कपास से नहीं मिलता, आपने सूत काता है तो उससे यह बनेगा, वैसा ही कपड़ा बनेगा, आपको रेशम नहीं मिल सकता। तो जेहा बीजे सो लुणे, जिस प्रकार का बीज बोया होता है फिर वैसा ही जाकर के भोगता है। मत्थे जो लिख्यास, ये तो हम मानते हैं ना कि हमारे माथे के ऊपर लेख है, संकेत है कि तेरे को ये करना पड़ेगा, व्यवहार में मानते हैं हम, वैसे नहीं है। सबना लिखा बुढ़ी कलाम, सबके मत्थे में लिखा हुआ है, लेकिन किसके ऊपर नहीं है, सबके माथे में है, लेकिन एक बात कही है जपजी साहब के अंदर महाराज जी ने कि जिन यह लिखे तेस सिर ना है, सबके ऊपर है, अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गंगा सबके ऊपर है, जिन यह लिखे तेस सिर ना है। एक ही ऐसा है कि जिसके सिर पे नहीं है, कौन है, जिन यह लिखे, जिसने जे लिखे हैं उसके ऊपर नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि सबके ऊपर लिखता है तो सबसे अलग रहेगा ना, सबके ऊपर कहते हैं कौन से लेख हैं, हुक्म रूपी लेख है, आज्ञा भय रूपी लेख है, सबके ऊपर अंकुश है उसका, सबका कंट्रोलर है वो, हुक्म रूपी लेख है कि ऐसा ऐसा पूरा हिसाब बना करके आपको भेजता है, तो आप उसी उसके इधर उधर हो ही नहीं सकते, 1% भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, पूरा ब्यौरा आपको दिया हुआ है कि ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश है। निरंकुश कहते हैं जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनकी कैसी मुक्ति उनको मिलती, निरंकुश जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, इसलिए कहते हैं जय जेहा बीजय सोलुणे मत्थे जो लिख्यास, जो माथे के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जो माथे के ऊपर लिखा हुआ है ना ये भी मिट सकता है कोई, ये भी शक्ति है किसी में, वैसे नहीं मिटती है लेकिन मिटने की शक्ति है, किनके पास है मिटने की शक्ति, ये चरण धूड़ी में है, महात्माओं की चरण धूड़ी किस लिए लिखी जाती है, किस लिए हम माथे को लगाते हैं वो चरण धूड़ी, माथे को क्यों लगाते हैं, कोई ना कोई संकेत है ना, वो चरण धूड़ी हम सिर पे क्यों नहीं डाल लेते, और किसी शरीर के अंग में क्यों नहीं डालते। जब भी आप कहीं जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, मंदिर जाएंगे, महात्माओं के पास जाएंगे, तो नीचे हाथ लगा कर माथे को क्यों लगाते हैं, संकेत है ना कि यहाँ कुछ ना कुछ है जो इस चरण धूड़ी से धुल जाता है। तो इसका मतलब ये जो बात लिखी है मत्थे जो लिख्यास, माथे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये उस चरण धूड़ी में पावर है कि इसको मिटाती है, और मिलती नहीं है, बहुत लोगों को तो मिलती नहीं है। मस्तक लगे साध रेन बड़भाग जिना दे, जिनके बड़े भाग्य होते हैं उनके माथे को लगाने के लिए चरण धूड़ी मिलती है। एक ऐसी शंका की थी किसी ने गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में, कोई बैठा था एक फकीर, उसने कहा ये क्या आपने पाखंड बना रखा है, सभी लोग आपको आकर के माथा टेकते हैं, ये क्या आप इनको क्या देते हैं, जो इनके भाग्य में है वही मिलेगा, आप इनको क्या देते हैं। तो उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है साईं जी, इसका उत्तर देंगे आप, कहते उत्तर ही मैं चाहता हूँ इसलिए मैं आया ही। तो कहते गुरु महाराज जी ने बोला अपने सेवादार को कि हमारी स्टंप हमारी मोहर और एक कागज खाली लेकर के आओ, खाली कागज और हमारी मोहर। तो वो सेवादार लेकर के जब आए तो जो बैठा था फकीर उसको महाराज जी ने वो मोहर दिखाई, कहते साईं जी इस मोहर को देख रहे हो, कहते हाँ
दामन संग्राम जी बराबर
वो चल रही, वो कहते हैं कि देख रहे हो, कहता हाँ देख रहा हूँ। तो महाराज जी कहते इस मोहर के ऊपर जो अक्षर हैं पढ़ लोगे, कहते नहीं महाराज, कहते क्या बात, कहते महाराज ये तो उल्टे हैं, उल्टे अक्षर हैं। तो महाराज जी ने कागज पकड़ा और ऐसे स्टंप मारी उसके ऊपर, कहते आप पढ़ लोगे, कहते हाँ आप तो पढ़ सकते हैं, कहते आप क्या हुआ, कहते महाराज जी अब अक्षर सीधे हो गए। तो कहते यही तो बात है साईं जी, इसलिए ये लोग आते हैं हमारे पास। गुरु लोगों के पास क्यों जाते हैं, जब माथा लेके जाते हैं तो लेख जो होते हैं ना लिखे हुए अक्षर उल्टे होते हैं, तो जब लगाते हैं जब स्टंप लगती है तो क्या होता है सीधे हो जाते हैं। कहते इसलिए लोग आते हैं महात्माओं के पास गुरुओं के पास, जब आकर के माथा लगाते हैं चरण धूलि स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, जो लेख हैं वो सीधे हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं, उल्टे ही होते हैं तभी तो दुखी करते हैं, जब वो सीधे हो जाएंगे तो फिर काम सीधा हो जाता है। ये कहते हैं जेहा बीजय सोर ने मत्थे जो लिख्यास। ऐसी और भी उदाहरण बहुत आती है कि जिसने भी चरण धुरी लगाई उसके सीधे हो गए, बहुत इतिहास में उदाहरण आते हैं। तो फिर रैण विहानी पछतानी उठ चली गई निराश। जो लोग द्वैत में रहते हैं ना, उनको क्या होता है, जब उनकी ये आयु रूपी रात बीत जाती है, ये भी रात्रि है ना, एक स्वप्न है ना, ये भी एक जो हमारी आयु है, आयु रूपी रात्रि जब बीत जाती है ना, रैण विहानी पछतानी, जब आयु रूपी रात्रि बीत जाती है तो फिर क्या होता है, जब मतलब रात्रि खत्म होती है तो सुबह उठ करके जैसे हम लोग जाते हैं ना किसी काम पे, इस प्रकार कहते हैं कि जब उनकी आयु रूपी रात बीत जाती है तो फिर जब जहाँ से चलना होता है तो फिर पछतानी, केवल पश्चाताप ही बचता है। उठ चली गई निराश, जो ऐसे होते हैं ना वो निराशा ही पल्ले में लेकर के उनको जाना पड़ता है, जब आयु रूपी रात्रि बीत जाती है तो क्या होता है, उनको जाना पड़ता है, पश्चाताप करते हुए जाना पड़ता है। रैण विहानी पछतानी उठ चली गई निराश, ऐसे जो जिज्ञासु जो होते हैं ऐसे लोग, वो कहते हैं फिर जाते हैं पश्चाताप करके। तो जो गुरुचरणों में आ जाते हैं उनका क्या होता है, उनकी अज्ञान रूपी रात्रि रैण विहानी, उनकी अज्ञान रूपी रात्रि अविद्या रूपी रात्रि चले जाती है, निराश हो जाते हैं वो संसार को। उठ चली, उठ चली उनकी अज्ञान रूपी रात्रि, उठ चली तृष्णा रूपी अग्नि, उठ चली यानी समाप्त हो गई। क्यों निराश, क्योंकि संसार से निराश होकर उपराम होकर के जब उन्होंने चिंतन किया तो उनकी अज्ञान रूपी रात्रि उठ चली यानी निवृत्त हो गई। फिर लेकिन जो साक्त पुरुष होते, विमुख होते हैं, उनकी हालत कड़ी है, चले जुआरी दोए हाथ झार। जैसे जुआ खेलने वाले होते हैं ना, जब हार जाते तो क्या होता है, हाथ मलते हुए जैसे जुआरी चले जाता है ना, इस प्रकार कहते हैं कि जब वो जाते हैं तो हाथ मरोड़े तन कपे, कुछ भी नहीं होता उनके पल्ले में, तो निकल जाते हैं फिर निराश होकर के, दुखी होकर के संसार से जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि जब इस प्रकार की हालत होती है किसी की, ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल सकता है, जो भटक जाता है संसार से, उसकी यदि वो मुक्ति चाहता हो तो उसको मुक्ति कहाँ से मिलेगी, मानो द्वैत के अंदर ही घूम रहा है, पदार्थ इकट्ठे कर रहा है, खा रहा है, जीव रहा है, मर रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, तो उसकी विश्रांति कहाँ है, उसकी ये अज्ञान रूपी जो रात्रि है, अविद्या रूपी रात्रि है, ये कब दूर होगी, उसको प्रकाश कहाँ से मिलेगा, उसके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय कब होगा, अज्ञान रूपी रात्रि को हटाने के लिए ये वाला सूर्य काम नहीं करेगा, आयु रूपी जो रात्रि है ये ऐसे ही बीत रही है तो इसको प्रकाशित कौन करेगा, ज्ञान रूपी सूर्य। तो कहते जो ज्ञान रूपी सूर्य है वो कहाँ से मिलेगा, उसके लिए कौन बतलाएगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिनका साधु भेटी है सो दरगाह होए खलास। जो जहाँ से दुखी होकर के मर के जाते हैं ना दरगाह में, धर्मराज के पास में, तो वहाँ से फिर जाकर के जातना सहनी पड़ती है, जो कर्म का फल है उसको भोगना पड़ता है। लेकिन जिसको साधु मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, वो क्या होता है, दरगाह, दरगाह में क्या होता, खलास, उसकी खलासी हो जाती है, वो छूट जाता है, यानी उसके जो बंधन हैं कट जाते हैं। किसके कटते हैं, जिनको साधु भेंट गए, दूसरे के नहीं। बंधन का भ्रम था ना, भ्रांति थी, बंधन थे नहीं, लेकिन बंधन की जो भ्रांति है वो दुखी करती है। ज्ञान का प्रकाश अंदर है, लेकिन किसने ढका है उसको। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य को आज हम कहेंगे बाहर की, आज क्या हुआ, सूर्य को बादल ने ढक दिया। सूर्य को बादल कभी ढक सकता है? मानो यहाँ पर सूर्य को बादल ने ढका है, आप दो जिला छोड़ के आगे जाएंगे तो वहाँ धूप लगी है, तो बादल ने सूर्य को ढका है क्या? हम तो यही कहेंगे कि बादल ने सूर्य को ढका है। बादल सूर्य को नहीं ढक सकता, सूर्य इतना छोटा नहीं है कि बादल उसको ढक जाए। लेकिन जब हम समझते हैं तो क्या हुआ, बादल ने सूर्य को नहीं ढका, बादल ने हमारी दृष्टि को ढका है, हम सूर्य को नहीं देख पा रहे। सूर्य को नहीं ढक सकता वो कभी भी, ढका होता तो वहाँ जाकर के देखिए, या यही तो अमेरिका में देखिए, वहाँ इस समय इधर दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ रात है इधर दिन है, तो इसका मतलब सूर्य को नहीं ढक सकता बादल। किसको ढकता है, हमारी दृष्टि को। तो जब हमारे को हरि के दर्शन नहीं अंदर हो रहे, ज्ञान रूपी सूर्य नहीं दर्शन हो रहा, तो किसने उसको ढका है, उसको अज्ञान ने ढका है। अज्ञान रूपी बादल हैं हमारे अंदर, उन्होंने ढक दिया है ज्ञान रूपी सूर्य को,